हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। झलक के शरीर से आती भीनी सी खुशबू उसे पूरी तरह मदहोश कर रही थी। इस वक्त ना उसे सड़क दिख रही थी, ना गाड़ियां, ना आसपास की दुनिया। उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस पतली सी कमर पर था जिसे उसने कसकर थाम रखा था, और उस एहसास पर जो उसके दिल की धड़कनों को बेकाबू कर रहा था, और साथ ही साथ उसकी पीठ पर अपना सिर टिकाकर जो वो बैठा हुआ था, उसे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। ऐसा सुकून जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उधर झलक मन ही मन यही सोच रही थी कि शायद वाकई उसे डर लग रहा है। वो इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि इस वक्त आदित्य के मन में उसके लिए कैसी कैसी भावनाएं चल रही हैं। फिलहाल झलक ने लगभग एक घंटे का सफ़र आधे समय में ही तय कर लिया और जल्दी ही बाइक मेंशन की ठीक बाहर आकर रोक दी। आदित्य अब भी आंखें बंद किए झलक को पकड़े बैठा था, जैसे अभी भी सफ़र जारी हो। झलक ने बाइक रोककर उसे आवाज़ दी, मिस्टर राणा, हम पहुँच गए हैं। मिस्टर राणा, सुन रहे हैं आप? लेकिन आदित्य मानो कुछ सुन ही नहीं रहा था। वो तो पूरी तरह झलक के एहसास में खोया हुआ था। अब झलक को एहसास हुआ कि वो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है, और अब भी उसी तरह उसे चिपका बैठा है। उसने झुंझलाकर उसके बाजू पर जोर से नोच दिया। आ, आदित्य तुरंत आंखें खोलकर बोला, ये क्या बदतमीजी है, ऐसे कोई नोचता है क्या? जंगली बिल्ली हैं आप? झलक ने तुरंत उसकी ओर घूर कर कहा, क्यों, आपको तो डर लग रहा था ना, कहीं सो तो नहीं गए थे बैठे बैठे? मैंने आपको पीछे बैठने के लिए कहा था, सोने के लिए नहीं, इसीलिए जगाना पड़ा। ये कहकर वो बाइक से उतरी, आदित्य को उतरने का इशारा किया और बाइक को पार्किंग एरिया की ओर ले गई। आदित्य मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा, फिर खुद भी मेंशन के अंदर जाने लगा। अंदर इस वक्त अनामिका, बलबीर राणा और पूरा परिवार साथ बैठा था। सभी लोग खाना खा चुके थे और हल्के फुल्के मजाक और गपशप का माहौल चल रहा था, लेकिन बलबीर राणा ने जिद पकड़ रखी थी कि वो झलक से मिले बिना कहीं नहीं जाएंगे, इसलिए सबको उसी का इंतजार था। उधर अभय की नज़रें बार बार अनामिका की तरफ जा रही थी। कबीर को न जाने क्यों ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। हालांकि कबीर और अनामिका की जब भी मुलाकात हुई थी, दोनों में सिर्फ तकरार ही हुई थी, फिर भी उसे भीतर से अजीब सी कसक हो रही थी। इसी बीच अनामिका ने मुस्कुराते हुए कबीर से पूछा, मिस्टर आहूजा, आप करते क्या हैं? मैंने आपको कभी किसी खास काम में व्यस्त नहीं देखा, ना ही मिस्टर राणा के ऑफिस में आते जाते देखा। बातों बातों में ये सवाल सुनकर कबीर थोड़ा चौंका और हल्की चिड़ता के साथ बोला, मिस मल्होत्रा, आपको मेरे काम से क्या लेना देना, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसका ये रूखा जवाब सुनते ही बलबीर राणा ने तुरंत उसके कान पकड़ लिए और बोले, क्या कर रहा है तू, लड़की से ऐसे बात करते हैं? फिर मुस्कुराते हुए अनामिका से बोले, अरे बेटा, ये तो खुद कुछ नहीं बताएगा, इसका एक बड़ा शोरूम है, कभी कभार वहाँ जाता है, वरना मालिक बनकर ही खुश रहता है। हर तरह के ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं वहाँ, बच्चों से लेकर बड़ों तक के। अगर तुम्हें शॉपिंग करनी हो तो कल ही चली जाना, अपना ही शोरूम समझना, जो पसंद आए खरीद लेना, इसकी चिंता मत करना। सबके सामने इस तरह छेड़े जाने पर कबीर और चिढ़ गया। अनामिका की हल्की सी मुस्कान देखकर तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। तभी अभय ने बात संभालते हुए कहा, मेरे बारे में तो आपको पता ही है अंकल, जैसा मैंने पहले बताया था, मेरा अपना बिजनेस सेटअप है। यहाँ तो मैं सिर्फ अपने बीमार दादाजी को देखने आया हूँ, लेकिन लगता है दादाजी को तो पार्टी और मेहमानों से ही फुर्सत नहीं। उसकी ये बात सुनकर सबकी नज़रें उसी पर टिक गईं। बलबीर राणा ने भौं उठाकर कहा, अच्छा तो मल्होत्रा मेंशन आने का मन किसका था, मेरा या तुम लोगों का? अब कबीर और अभय एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। दोनों के मन में एक ही डर था, कहीं दादाजी सबके सामने ये ना बोल दें कि वे खास तौर पर झलक से मिलने आए हैं। तभी अभय जल्दी से उठकर दादाजी के पास जाकर बैठ गया और बोला, अरे मेरे प्यारे प्यारे दादाजी, आप भी ना छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, चलिए अब मुस्कुरा दीजिए। फिर उसने फटाफट अनामिका की तरफ देखकर कहा, अगर आपके हाथ की एक एक कप गर्म चाय मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। इतने में दरवाजे की ओर हलचल हुई, शायद झलक और आदित्य अंदर आ चुके थे और सबकी नज़रें उसी दिशा में उठी। जैसे ही अभय ने अपने फ्रेंडली अंदाज में ये बात कही, अनामिका तुरंत खड़ी हो गई और मुस्कुराकर बोली, क्यों नहीं, मैं अभी चाय बनाकर लेकर आती हूँ। ये कहकर वो बिना किसी को और कुछ कहने का मौका दिए किचन की ओर चली गई। उसी वक्त आदित्य भी अंदर आ चुका था। उसे देखते ही बलबीर राणा तुरंत खड़े हो गए और बोले, अरे बेटा, कहाँ रह गए थे तुम, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, हमने तुम्हें कितने कॉल किए लेकिन तुमने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया, लास्ट टाइम तो तुम यहीं घर पर थे, फिर अचानक कहाँ चले गए? दादाजी के सवालों का जवाब देने से पहले आदित्य ने सबसे पहले दिग्विजय सिंह जी के पास जाकर उनके पैर छुए, फिर स्नेहा जी और सौरभ जी से भी आदरपूर्वक मिला। सभी लोग हल्की फुल्की बातचीत कर रहे थे। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, एक्चुअली मिस मल्होत्रा को अचानक एक जरूरी काम आ गया था, इसलिए हम दोनों साइट पर चले गए थे, अभी साथ में ही आए हैं। जैसे ही उसने सहज भाव से ये कहा, दिग्विजय जी और बलबीर राणा दोनों के चेहरे खिल उठे। दिग्विजय जी तुरंत उत्सुकता से बोले, तो क्या झलक तुम्हारे साथ थी? उनकी इस खुशी भरी प्रतिक्रिया को देखकर आदित्य थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने सिर हिलाते हुए कहा,
जी हाँ, कुछ जरूरी काम था इसीलिए हमें साइट पर जाना पड़ा। वो अभी बाइक पार्क करने गई है, हम दोनों बाइक से गए थे। ये सुनते ही दिग्विजय जी और भी खुश हो गए। वहीं खमीर और अभय के कान खड़े हो गए। दोनों तुरंत आदित्य के पास आकर खड़े हो गए। अभय हंसते हुए बोला, वाह भाई, मानना पड़ेगा, रात में बाइक पर एक खूबसूरत लड़की के साथ लंबा सफर, जिंदगी के असली मजे तो तुम्हें ले लिए। उसकी बात सुनकर आदित्य उसे घूरने लगा और धीरे से बोला, फालतू की बकवास बंद करो, अगर किसी ने सुन लिया तो न जाने क्या सोचेगा। तभी अनामिका ट्रे में चाय लेकर आ गई। उसने सबको चाय सर्व की और आदित्य की ओर देखकर मुस्कुराई, हेलो मिस्टर राणा, हाउ आर यू। आदित्य ने भी शिष्टता से जवाब दिया। इसी बीच आदित्य ने पूछा, अनामिका झलक अंदर क्यों नहीं आई अभी तक। दरअसल झलक बाइक पार्क करने के बाद बाहर ही खड़ी होकर अपना फोन चेक कर रही थी। उसने अंदर आने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। अनामिका ने सबको चाय दे दी और खुद भी एक तरफ बैठ गई। अभय ने जैसे ही चाय का पहला घूंट लिया तुरंत उसकी तारीफों के पुल बांधने लगा, वाह क्या चाय बनाई है आपने, कमाल है। वहीं कबीर अंदर ही अंदर चिढ़ रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, इस अभय को हो क्या गया है, हर बार इस लड़की की इतनी ज्यादा तारीफ क्यों करता है, चाय ठीक ठाक ही तो है। तभी अनामिका ने आदित्य से पूछा, मिस्टर राणा आपको भूख लगी होगी, क्या मैं आपके लिए खाना लगा दूं। लेकिन आदित्य ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ चाय पी लूंगा। इसी बीच दादाजी बोल पड़े, अरे झलक कहाँ रह गई, बाइक पार्क करने में इतना वक्त लगता है क्या, अभी तक अंदर क्यों नहीं आई। उसी समय झलक बेपरवाही से फोन स्क्रॉल करते हुए दरवाजा खोलकर अंदर आई। अभय जो अभी चाय का घूंट लेने ही वाला था उसे अचानक सामने देखकर इतना चौंक गया कि उसके मुंह से गर्म चाय बाहर निकल गई। वो तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। आदित्य और कबीर दोनों ने उसे घूरते हुए कहा, जरा बिहेवियर का ध्यान रखा करो, ये क्या तरीका है। कबीर ने मौका मिलते ही चुटकी ली, अरे अभय जी अभी तो चाय बड़ी स्वादिष्ट लग रही थी, अचानक क्या हो गया, उल्टी करने का मन कर रहा है क्या। मिस अनामिका आपने चाय में आखिर डाला क्या है। अभय ने उसे घूर कर देखा लेकिन कुछ बोला नहीं।
तब तक झलक सबके पास आ चुकी थी। उसने सबसे पहले बलबीर राणा से आदरपूर्वक मुलाकात की, फिर कबीर को हल्की सी मुस्कान के साथ हेलो कहा। अभय की ओर उसने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि वो उसे जानती ही नहीं थी। बलबीर राणा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आ गई मेरी बेटी, हम तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, मैंने तो साफ कह दिया था कि अपनी बेटी से मिले बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सब लोग आपस में बातें कर रहे थे लेकिन अभय की नज़रें बार बार सिर्फ और सिर्फ झलक पर ही जाकर ठहर रही थीं। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और एक अनकही जिज्ञासा भी।